हरे कृष्णा। तो आज सोमवार है, ऐसे तो हम चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं, करेंगे तो चैतन्य चरितामृत से पाठ, लेकिन जो विषय अभी चल रहा है उसको छोड़ करके आज दो महान उत्सव हैं, श्रील वक्रेश्वर पंडित उनका तिरुभाव तिथि महोत्सव और हेरा पंचमी महोत्सव। तो इन दोनों के विषय में हम कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। 24 जून को वक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव दिवस था और उस दिन भी मैंने ही उनके बारे में गुणगान किया था। तो एक लीला मैंने उस दिन संक्षेप में बताई थी, देवानंद पंडित का उद्धार। तो मैंने सोचा कि विषय रिपीट ना हो इसीलिए, और उस लीला को हमने पिछले चर्चा नहीं किया था। तो कैसे श्रील वक्रेश्वर पंडित देवानंद पंडित जी के उद्धार के माध्यम बनते हैं, चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में ये लीला वर्णन आती है, तो उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञान कुलिया ग्राम में रहते थे और जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप के अंदर वास कर रहे थे और जब वो अपने गृहस्थ आश्रम में थे, तो इस देवानंद पंडित, हालांकि ये भागवत के बहुत बड़े कथावाचक थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु में इनकी श्रद्धा नहीं थी, इनके विश्वास नहीं था। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते ही वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु के ट्रिक के द्वारा वे कहाँ पहुंचाए जाते हैं, शांतिपुर। फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हैं तो सार्वम भट्टाचार्य रामानंद राय से बड़ा निवेदन करते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, परमिशन दो। तो वहां के सब भक्त महाप्रभु को बोलते थे कि नहीं, अभी तो रथ यात्रा आने वाली है, तो उसके बाद जाइएगा। फिर बोलते थे कि नहीं, अभी रथ यात्रा जाती थी तो बोलते कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है, उसके बाद आप चले जाइएगा। जन्माष्टमी आती थी उसके बाद महाप्रभु बोलते थे, आप मेरे को जाने, तो बोलते विजयदशमी आने वाली है, तो अब वो देख के जाइएगा। महाप्रभु विजयदशमी आती थी तो बोलते कि अब कार्तिक आने वाला है, उसके बाद जाइएगा। फिर कहते थे कि महाप्रभु अभी कार्तिक हो गया है, महाप्रभु अब जाऊं, तो बोलते नहीं, अभी आप डोल यात्रा यानी होली, उसके बाद जाइएगा। तो ऐसे करते करते 2 साल तक महाप्रभु जो है को रोका उन्होंने। महाप्रभु प्रेम के वश में भी हैं और दूसरा वे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे वैष्णवों के आशीर्वाद के बिना हम एक्चुअली धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार फिर महाप्रभु एक दिन बड़े प्रेम से सार्वम भट्टाचार्य रामानंद राय को बोलते हैं कि आप दोनों मुझे इतने समय से यहाँ पे रोक के रखे हो, लेकिन मेरे वृंदावन जाने की तीव्र उत्कंठा है, तो मैं आशा करता हूँ आप मुझे आज्ञा दोगे। तो दोनों बड़े शर्मिंदा होते हैं कि हमने महाप्रभु से ऐसे ट्रिक्स किया, और फाइनली महाप्रभु जाते हैं। तो जब महाप्रभु जाते हैं, प्रताप रुद्र अपने सैनिक इत्यादि उन तक उड़ीसा के बॉर्डर तक छोड़ते हैं उनके लिए, लेकिन महाप्रभु इस बार भी वृंदावन डायरेक्ट रास्ते से ना होकर के कहते हैं कि मेरी योजना क्या है, बंगाल होकर जाने की है। बंगाल में मेरे 2 आश्रय हैं, कौन, जननी और जाह्नवी, मेरी माता शची और गंगा, इन 2 का मुझे आश्रय ग्रहण करना है, तो मैं बंगाल होकर के जाऊंगा। वास्तविक अभिप्राय तो चैतन्य महाप्रभु का क्या था कि रूप और सनातन गोस्वामी से मिलना था राम केली ग्राम के अंदर जा करके, और दूसरा बंगाल के अंदर भी कई सारे भक्तों से उनको मिलना था और लीला करना था, लेकिन मुख्य कारण जो कोई नहीं जानता था वो महाप्रभु आगे जाके बतलाते हैं रूप और सनातन को, कि तुम दोनों को मिलने के लिए मैं खाली यहाँ पे आया था। और उस दौरान जब महाप्रभु रूप और सनातन से मिलने के लिए राम केली की ओर जा रहे होते हैं, तो महाप्रभु नवदीप के अंदर रुकते हैं और नवदीप के अंदर खूब संकीर्तन होता है, अनेकों हजारों लाखों लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम नवदीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं विद्यावाचस्पति के घर पे, तो ये सब कथा का वर्णन आता है कि महाप्रभु संन्यास के बाद किस प्रकार नवदीप के अंदर आए थे, विद्यावाचस्पति इत्यादि घर पे रुके थे। तो वहीं पर एक और लीला होती है, अनेकों लाखों लोग वहां पर आए थे, किसी को नहीं पता कहां से आए, इनफैक्ट पूरे के पूरे जंगल उन्होंने फ्लैट कर दिए थे, रास्ते में पेड़ आता था, रास्ता नहीं था लेकिन रास्ता बना दिया सबने पेड़ तोड़ ताड़ के, और नदी में गंगा में भी कह रहे हैं कि जिसको नाव भर भर के आ गई, जब नाव में जगह नहीं मिली तो लोग ऐसे ही लकड़ी पकड़ के तैर के आ गए, कोई तैर के आ गया, जिसको तैरना नहीं आता था बोला पानी में चल के आ गया ऐसा। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के अंदर वर्णन करते हैं। और तब वहां पे एक और व्यक्ति उनको मिलने के लिए आता है, वो तो कौन, यही देवानंद पंडित, जिनकी गृहस्थ राष्ट्र में जो महाप्रभु थे तो उनमें श्रद्धा नहीं थी, और इनसे एक बड़ा अपराध भी हुआ था जो इनको जानकारी नहीं थी, श्रीवास ठाकुर के प्रति। ये भागवती कथा का अपने शिष्यों के साथ गुणगान कर रहे थे, तो श्रीवास पंडित जो है बाहर से जाते हैं और जब सुनते हैं भागवती कथा को तो बड़े आनंद विभोर हो जाते हैं और फिर वहीं पर ही लौटने लगते हैं, उनके अंदर भाव के सब विकार प्रकट हो जाते हैं। तो सबको लगता है कि ये बड़ी डिस्टर्बेंस है, तो देवानंद पंडित भी उन्हें कोई समझ नहीं पाता है कि ये तो उच्च प्रेम के लक्षण है, तो उनको वो सब शिष्य उठा करके बाहर फेंक देते हैं श्रीवास ठाकुर को, और देवानंद पंडित उन्हें रोकते नहीं। तो ये एक भारी अपराध उन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति किया था, लेकिन उनको इतना पता नहीं था कि मेरे से ऐसे अपराध हुआ है। तो गृहे वस वासे यखना छिला गौर चंद्र तखने यते ककोरी लेना परानंद प्रेममय देवानंद पंडित रमने नहिल विश्वास न देखिल ते कारणे। तो इसलिए महाप्रभु को समझ नहीं पाते थे क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं थी। हालांकि ऐसे तो वो अच्छे मतलब मायावादी नहीं थे ऐसा, और देखी बार योग्यता छाए पुनतान तबे कान्ना देखिल कृष्ण से प्रमाण। तो वैसे तो वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं कि वो भगवान को देखने की योग्यता थी उनके अंदर, पवित्र आत्मा थे, लेकिन सिर्फ कृष्ण जानते थे कि वो क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। तो हुआ क्या था, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का उद्धार करेंगे, लेकिन जब महाप्रभु संन्यास लेके चले गए तो देवानंद पंडित का एक बड़ा भाग्योदय हुआ। भाग्योदय क्या हुआ, उनको संग प्राप्त हुआ किसका, श्रील वक्रेश्वर पंडित जी का, जिनकी आतिर्भाव तिथि है। संन्यास करिया यदि ठाकुर चलीला तान भाग्य वक्रेश्वर आसिया मिलीला वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र ब्रह्मांड पवित्र जारे स्मरण ही मात्र। तो कविरा वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, कि वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे, उनके बहुत प्रिय संगी हैं, ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरण ही मात्र, उनके स्मरण मात्र से क्या हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। मैंने इसलिए इस लीला को आज चूज किया, उनका आज आविर्भाव तिरुभाव तिथि है। आविर्भाव में हमने चैतन्य चरितामृत से पढ़ा था, उनके 15 दिन पहले उनका आविर्भाव तिथि था। क्यों वक्रेश्वर पंडित बारे में क्या लिखा है, निरवधि कृष्ण प्रेम विरह विवल जार नित्य देवासुर मोहित सकल अश्रु कंप स्वेद हास्य पुलक हुंकार वैवरण्य आनंद मूर्छा आदि ये विकार चैतन्य कृपाय मात्र नित्य प्रवेशिले सकले आसिरे वक्रेश्वर देह मिले। तो निरवधि कृष्ण प्रेम विरह विवल, ये हमेशा कृष्ण से विरह के प्रेम भाव के अंदर आनंदित रहते थे, और देवता और असुर दोनों उनके उस नृत्य को देख करके क्या हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। कैसे, जब वो नृत्य करते तो क्या होता था, अश्रु सब प्रकार के अष्ट सात्विक विकार, अश्रु कंपन होना, स्वेद अर्थात पसीना आना, हास्य अर्थात हंसना, पुला का मतलब बाल खड़े होना, हुंकार मतलब जोरों से चिल्लाना, वैवरण्य आनंद, और जो है वैवरण्य मतलब शरीर का पीला पड़ जाना, आनंद मूर्छा आदि ये विकार, और बाद में क्या है मूर्छित हो जाना। तो ये सारे विकार वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य करते थे तो उनके अंदर प्रकट होते थे। चैतन्य कृपाय मात्र नृत्य प्रवेशिले सकले आसिया वक्रेश्वर देह मिले। तो ये सब अष्टात्विका चैतन्य महाप्रभु कृपा से उनके शरीर में प्रवेश करते थे। कविराज चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, वक्रेश्वर पंडित एरा उद्दाम विकार सकल कहित शक्ति आछा ये कहान, कि वक्रेश्वर पंडित के इस प्रकार के अनगिनत सात्विक विकारों का वर्णन कौन कर सकता है। दैवे देवानंद पंडित तेरा भक्ति वशे रही लेना ताहार आश्रम प्रेम रसे। तो हुआ क्या कि भाग्य से देवानंद पंडित जो है उनके साथ थोड़ा वक्रेश्वर पंडित की प्रीति भी थी, तो वक्रेश्वर पंडित उन्हें घर में आकर के रुके कुछ समय, और उनके साथ में क्या किया, प्रेम रस का आदान प्रदान किया, कृष्ण के प्रेम इत्यादि का। देखिया तहार तेज पुंज कलेवर त्रिभुवन ने अतुलित विष्णु भक्ति धर देवानंद पंडित परम सुखी माने अकैटवे प्रेम भावे करे न सेवने। वक्रेश्वर पंडित के एफलजेंट चमत्कारी कांतिमय देह को देख करके देवानंद पंडित बड़े सुखी खुश हुए, और ऐसा उनके शरीर में दिव्य तेज था जो कि त्रिभुवन में किसी के पास नहीं। तो देवानंद पंडित बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से उनकी जो है सेवा करने लगे। और वक्रेश्वर पंडित नाचे न यत क्षण वित्र हस्ते आपने बुले न तत क्षण आपने करे न सब लोक एक भीते पड़ी ले आपने धरी राखे न को लेटे। तो जब वक्रेश्वर नृत्य करते थे, देवानंद पंडित क्या करते थे, एक डंडा लेकर के खड़े हो जाते थे, ठीक है, आस पर वक्रेश्वर को डिस्टर्ब ना करें, कोई आएगा तो जैसे सिक्योरिटी होता ना, सब डंडा बना लेती है, तो ऐसे वो करते थे। और व्यक्तिगत रूप से, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे या पुलिस वाले कुछ लगाए थे, वो स्वयं डंडा लेकर के लोगों को रोकते थे। और यदि वक्रेश्वर पंडित कभी मूर्छित होने लगते थे तो स्वयं अपने हाथ से उनको पकड़ लेते थे और बड़े प्रेम से उनके शरीर से जो है धूल को हटाते थे और उस धूल को अपने शरीर पर लगा लिया करते थे। और जब तक वक्रेश्वर पंडित जो है देवानंद पंडित के साथ रहे तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में उनको बताते थे और इस प्रकार से उनका भी श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रीति जागा वैष्णवों के संग से। वैष्णवेर सेवार फल कहे ये पुराने तार साक्षी यही सबे देख विद्यमान है। तो वृंदावन ठाकुर कह रहे हैं कि देखिए ये है एक परम वैष्णव को सेवा करने का जो फल है, क्या फल होता है वह आगे बताया है कि ये जो देवानंद पंडित थे इनके कुछ क्वालिटी बताए हैं कि ये बहुत गुणी थे बाह्य दृष्टि से। आजन्म धार्मिक उदासीन ज्ञानवान भागवत अध्यापन बिना नहीं आन शांत दांत जितेंद्रिय निर्लोभ विषय प्राय आर कतेक व गुणे ताने है। बचपन से आजन्म धार्मिक, बचपन से ये बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, उदासीन विरक्त थे, ज्ञानवान बड़े पंडित थे, भागवत अध्यापन बिना नहीं आन और सिर्फ भागवत ही पढ़ाते थे, ऐसा नहीं कि कुछ और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। शांत दांत बड़े शांत थे, दांत मतलब इंद्रिय निग्रह था, जितेंद्रिय इनके इंद्रिया कंट्रोल थी, सेल्फ कंट्रोल था, निर्लोभ विषय और विषय से और लोभ से फ्री थे और अनेक अनेक गुण थे उनके अंदर, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु में उनका विश्वास नहीं था संभव। और यह जो अविश्वास की जो पापमय बुद्धि थी यह वक्रेश्वर पंडित कृपा से नष्ट हो गई। कृष्ण सेवा हई तो वैष्णव सेवा बड़ भागवत आदि सब शास्त्र कैल दड़। कि सभी शास्त्र क्या कहते हैं कि कृष्ण सेवा से बढ़कर क्या सेवा है, किसकी सेवा है, वैष्णव की सेवा है। आराधना नम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम सर्वत्र वैष्णव पूज्य स्वर्गे मर्त्ये रसातले देवतानाम मनुष्याणाम तथैव यक्ष रक्षणाम। कि अनेक और सबके अंदर जो वैष्णव सदैव क्या है, पूजित है। सिद्धिर भवति न वेति संशयोच्युत सेविनाम निसंशया सुतद भक्ता परिचर्या रतात्मनाम। तो ये श्लोक बड़ा फेमस है जिसे बताया गया है कि भगवान अच्युत की सेवा करने सिद्धि प्राप्त हो ना हो पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। एते का वैष्णव सेवा परम उपाय भक्त सेवा हैते से सबाई कृष्ण पाय। तो वैष्णव की सेवा करना क्या है, परम उपाय है और कोई व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है वैष्णव की सेवा करने से। जहां र प्रसाद भाई ए भव तरिया जाय कृष्ण प्राप्ति है जहां है ते। और एक और वर्ष के अंदर कहते हैं ओहे वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर क्या है, दया रसागर एदा से करुणा करी, है ना। तो इस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित संगेर प्रभावे गौर चंद्र देखीते चलीले अनुरागे। तो इस प्रकार देवानंद पंडित की बड़ी इच्छा हुई कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करूं और संग करूं। तो देवानंद पंडित उनके सामने आते हैं और चैतन्य महाप्रभु बैठे होते हैं और फिर देवानंद पंडित दंडवत करते हैं और साइड में बड़े संकोचवश खड़े हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु लेकिन उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप साथ में बैठिए। और पूर्वेता नयत किछु छिल अपराध शकल शमिया प्रभु कोरिला प्रसाद प्रभु बले तुम्ही ऐसे विला वक्रेश्वर अतैव हैला तुम्ही अमार गोचर। तो जो वक्रेश्वर ये देवानंद पंडित जितने पूर्व अपराध थे, एक्चुअली चैतन्य महापुरु ने पूर्व काल में इन्हें डांट भी लगाया था देवानंद पंडित को कि तुमने ऐसे श्रीवास के प्रति अपराध किया, मैं तुम्हें कभी कृपा नहीं दूंगा। पूर्व काल के अंदर ये भी लीला एक आती है। लेकिन यहाँ पे जब वक्रेश्वर पंडित सेवा किया तो महापुरु बड़े प्रसन्न हुए उनसे और बोले कि आपके पूर्व जितने भी अपराध किए हैं आपने वो सब क्षमा है और अपनी कृपा उन्होंने देवानंद पंडित को दी। और कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों मैं कृपा दे रहा हूं, तुम्ही ये सेविला वक्रेश्वर अतैव हैला तुम्ही अमार गोचर। कि आप ये क्यों देख पा रहे हो मेरा दर्शन, क्योंकि तुमने क्या किया, वक्रेश्वर पंडित की सेवा की है। वक्रेश्वर पंडित प्रभुरता पूर्ण शक्ति से कृष्ण पाय जता हरे करे भक्ति वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर कृष्ण नित्य करे नाचिते वक्रेश्वर। वक्रेश्वर पंडित भगवान श्री कृष्ण की के पास भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्तियां हैं, इसीलिए जो कोई कृष्ण वक्रेश्वर पंडित की सेवा करता है उसे कृष्ण प्राप्ति होते हैं। और बोले हैं वक्रेश्वर पंडित के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और जब जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते हैं कौन नृत्य करता है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं नृत्य करते हैं। ये ते स्थान है यदि वक्रेश्वर संगहय से स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठमय। तो जहां पे वक्रेश्वर पंडित से संगीत कोई स्थान है वह क्या है? सारे तीर्थ स्थल एक साथ है वहां पर और वैकुंठ के समान है वह। शुनि विप्र देवानंद प्रभु र वचन जोड़ हस्ते लागी ले न कोरी ते स्तवन। और फिर देवानंद पंडित जो है उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कई सुंदर सुंदर उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझे कृपा करके आदेश दीजिए कुछ, है ना, और आप बहुत कृपालु हैं तो मुझे बताइए कि श्रीमद् भागवतम का जो है कैसे समझना चाहिए और समझाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु एक बड़ी सुंदर उपदेश देते हैं उन्हें। सुन विप्र भागवते ऐ वाखा निब भक्ति बिना अर किचु मुखे न आनिब आदि मध्य अंत्य भागवते ऐ कय विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध अक्षय अव्यय। तो कहते हैं कि देखो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में मध्य में और अंत में क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही श्रीमद् भागवतम का सार है, प्रारंभ है आदि में और मध्य में और अंत के अंदर। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम की रचना का गुणगान करो, भागवतम का किसी अन्य प्रकार से आप जो है गुणगान मत कीजिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार भागवतम को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। जय श्री वक्रेश्वर पंडित तैयारी महोत्सव की। और उनका उद्धार इसीलिए हो पाया क्योंकि वक्रेश्वर पंडित की कृपा थी उनके पास में। हरे कृष्णा। तो आज ये हीरा पंचमी का महोत्सव है। श्री जगन्नाथपुरी के अंदर 4 तारीख को रथ यात्रा का उत्सव हुआ था। श्री जगन्नाथ जी अपने मंदिर नीलाचल श्री मंदिर से निकल कर कहां जाते हैं? गुंडीचा मंदिर या सुंदराचल, जो कि वृंदावन के समान है। जय राधा राधिकरण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्री गौणदेश्वर प्रभुपाद की जय। तो श्री जगन्नाथ स्वामी जो हैं इस समय गुंडीचा मंदिर के अंदर निवास कर रहे हैं। तो और सब भक्तों को वहां पे दर्शन दे रहे हैं। तो आज के दिन गए थे 4 तारीख को, आज हो गया 8 तारीख, यानी 5वां दिन है आज। तो लक्ष्मी जी को तो बोल के गए थे कि मैं क्या हूं, 1-2 दिन में आ जाऊंगा बस, है ना। लेकिन 5 दिन हो गए तो लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आता है इस दिन कि भाई ऐसा क्या है वहां पर कि वापिस आने का उनका मन ही नहीं कर रहा है और झूठ बोल करके गए थे। तो ये एक बहुत सुंदर लीला जो है होती है, जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आनंदित होकर आस्वादन किया और किया करते थे। तो आप हमारे पीछे श्लोक दोहराइए। नीला चले आईला पुनः भक्त गण संगे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमीर रंगे। नीला चले आईला पुनः भक्त गण संगे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमीर रंगे। नीला चले हाइला पुनः भक्त गण संगे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमीर रंगे। समय कम है तो हम सिर्फ सीधा अनुवाद अनुवाद में जाते हैं। प्रभुपाद जी ने एक या 2 जगह तात्पर्य दिए हैं। ये सुंदर महोत्सव के विषय में चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों के साथ इसका आस्वादन कर रहे हैं। तो जब मैं पढ़ रहा था तो सोच रहा था कि ये सेक्शन को आगे पढ़ना चाहिए, भक्तों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेक्शन है ये। लेकिन फिर मैंने इसके रुक्मिणी कृष्ण से पूछा कि क्या बोलना चाहिए, बोले उत्सव है तो बोलना चाहिए। तो बहुत ही इसके अंदर श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के माधुर्य भाव के और मान मर्दन लीलाओं के विषय में वर्णन किया गया है। तो सिर्फ सुन के आनंदित हो सकते हैं भक्त, और किसी अन्य प्रकार के विकार मत उत्पन्न कीजिएगा, है ना। और अंत में मैं श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ के जो है किस भावना से हम इसको पढ़ रहे हैं वो आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो नीला चले आईला पुनः भक्त गण संगे। तो सभी भक्त लोग जो हैं नीला चल आए थे, बंगाली वैष्णव सब थे, उड़ीसा से भी सब वैष्णव थे। ये सारे भक्त लोग एकत्रित हुए किस लिए? देखिते भक्त गण संगे, ये सब आए और क्या देखने के लिए? देखी थे उत्कंठा हेरा पंचमी रंगे, तो हेरा पंचमी का जो महोत्सव को देखने के लिए आए थे। काशी मिश्र प्रभु रे बहु आदर करिया स्वगण सह भाल स्थाने वसा इला लैला। तो काशी मिश्र ने आदर के साथ महाप्रभु का स्वागत किया और महाप्रभु और उनके संगियों को एक बड़े अच्छे स्थान में बैठाया। अब ये काशी मिश्र कौन थे? ये काशी मिश्र बेसिकली महाराज प्रताप रुद्र के आप कह सकते हैं एक बड़े कॉन्फिडेंशियल मंत्री थे और उनके व्यवस्था के अंदर लगभग राजा के नेक्स्ट थे, तो सारी व्यवस्थाएं ये किया करते थे और इनके ऊपर विशेष भार प्रताप रुद्र जी ने दिया था महाप्रभु और उनके भक्तों की सेवा करने के लिए कि उनको प्रसाद में उनके आवास में कोई भी दिक्कत ना हो। और काशी मिश्र की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है किसको मालूम है? क्योंकि उनके निवास स्थान में श्री चैतन्य महाप्रभु रुके थे, उस निवास स्थान का नाम क्या है? गंभीरा। तो ये काशी मिश्र ने बड़ा इनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम था और तो अच्छे एक जगह में वीआईपी लोकेशन में उनको दिया कि अच्छे से दर्शन कर सकें और पूरे आनंद को भक्त लोग कर सकें। रस विशेष प्रभु सुनिते हमन हैला ईशित हासिया प्रभु सूर्य पर पूछिला। तो चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने को हुई तो हंसते हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे, यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारका यह विहार सहज प्रकट करे प्रेम उदार तथापि वत्सर मध्य हय एक बार वृंदावन देखी ते तार उत्कंठ अपार। तो बोला जगन्नाथ जी तो वैसे द्वारका में अपनी लीलाएं प्रवेश करते हैं प्रकट करते हैं और परम उदारता प्रकट करते हैं, यानी जो उनका श्री मंदिर है जगन्नाथ मंदिर है वो क्या है? द्वारका के समान है। भगवान तो राजा के रूप में रहते हैं जगन्नाथ के रूप में, लेकिन साल में एक बारी क्या करते हैं वो वृंदावन की लीलाओं को देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो जाते हैं। आप सबने कथा सुने होंगे बहुत सारे जगन्नाथ जी के विषय के अंदर कि जगन्नाथ पूरी क्षेत्र में कैसे प्रकट हुए थे, किस राजा के रिक्वेस्ट पे? इंद्रदुम्न महाराज के रिक्वेस्ट पे। भगवान द्वारका में कैसे प्रकट हुए थे? रोहिणी माता जब वृंदावन ये द्वारका की पटरानियों को महिषियों को भगवान की ब्रज लीला का वर्णन करती हैं तो सुभद्रा बाहर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ी होती है, लेकिन कृष्ण बलराम आ जाते हैं और सुनते हैं तो जगन्नाथ जी का द्वारका में प्राकट्य होता है। ऐसे ही जगन्नाथ के स्वरूप का श्री वृंदावन धाम में भी जो है एक जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा तो वो लोग वृंदावन भी उनके स्वरूप का प्राकट्य होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत विरह महसूस कर रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सुंदर लीला आती है। तो नारद जी सोचते हैं कि अरे बलराम जी सोचते हैं कि भाई भगवान ब्रज के भाव में बिल्कुल विरह थे, रो रहे थे। सबने बोला कृष्ण को अब ब्रज में लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कौन जाएगा? तो पहले बोला उद्धव को तुम जाओ। उद्धव बोला पहले भी गया था मैं सिखाने के लिए और उनको बोला था कृष्ण तुरंत आएंगे, लेकिन अभी गोपियों के प्रेम को देख के ना मैं सहन कर पाऊंगा, फिर वो बोलेंगे तुम झूठे हो, तुमने तुम्हारा स्वामी झूठा। वो भी बोला था कि मैं आऊंगा तुरंत आने वाला हूं, तुम भी उनके सेवक हो, तुम भी झूठे हो। फिर बोला बलराम जी को आप आगे जाओ। तो बलराम बोले भाई मैं भी गया था वहां पे, यही आश्वासन दे के आया था कि मैं भी आऊंगा। वो बोलेंगे छोटा भाई भी झूठा, बड़ा भी झूठा, वो विश्वास नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। लेकिन क्या करें, अभी कृष्ण को ब्रज में लेके जाना भी बहुत जरूरी है। तो फिर सुभद्रा देवी बोलती है मैं जाऊंगी, है ना, मैं स्त्री हूं तो मेरी बात सब विश्वास भी करेंगे और आप लोग पीछे पीछे कृष्ण को लेके आओ। तो सब वो रथ का ऑर्गेनाइज करते हैं, सुभद्रा का रथ ऑर्गेनाइज करते हैं। बलराम जी कहते हैं ठीक है आप आगे जा रहे हो छोटी बहनों, तो आगे तो बड़े भाई को जाना पड़ेगा। तो अपने रथ में बैठते हैं, आगे वो जाते हैं, पीछे सुभद्रा जाती है और पीछे सब बढ़िया सुंदर रथ का ऑर्गेनाइज किया होता है। नारद जी उद्धव जी वगैरह ने कृष्ण को बैठाते हैं उसके अंदर, कृष्ण को जगाते हैं, बोले वृंदावन आ गया वृंदावन आ गया, चलो रथ के अंदर उनको बैठाते हैं और लेके जाते हैं। और तब तक क्या होता है, बलराम जी पहुंच जाते हैं, सुभद्रा माता पहुंच जाती है, बोले कृष्ण आने वाले हैं। अब ब्रजवासियों का क्या हाल था? ब्रजवासियों का हाल ये था कि ऐसे तो कृष्ण के विरह में वो मरणासन थे और कृष्ण के विरह में वो जीवित रहने की उनकी अभिलाषा भी नहीं थी, लेकिन एक ही वचन उन्हें रोक के रखा था, वो क्या था? आई विल कम बैक, कि कृष्ण वापस आएंगे। और कृष्ण यदि हमें देखेंगे कि हम मृत प्राय हो गए तो क्या है, कृष्ण जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ब्रजवासी क्या है, प्राण भी नहीं त्याग रहे थे। ये है ब्रज भाव। तो अब वहां पे जब तो सब सब सखियों को गोपियों को बताते हैं कृष्ण आने वाले हैं, तो कृष्ण के आने के लिए वृंदावन में तैयारी होने लगती है, लेकिन सब गोपियां जाती है राधा रानी को उठाने के लिए। तो राधा रानी तो बिल्कुल मृत प्राय मूर्छित हुई पड़ी थी, तो उनको बोला कि कृष्ण आ रहे हैं कृष्ण आ रहे हैं। इधर क्या होता है, कृष्णा आते हैं वृंदावन के अंदर और जब कृष्ण के शरीर से बहने वाली वायु बहती है और श्रीमती राधा रानी को स्पर्श करती है, तो राधा रानी क्या है तो उनको वो उनके मतलब चेतना वापस आने लगती है बेसिकली। और इधर कृष्ण तो राधा रानी जागती है, जैसे कृष्ण उनको देखते हैं क्या होता है, कृष्ण जैसे बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं और एक कछुए के समान बन जाते हैं उस आनंद को देख करके। तो वो जगन्नाथ का रूप है जो वृंदावन के अंदर प्रकट होता है। और उससे जस्ट पहले क्या होता है, जब कृष्ण राधा रानी का दर्शन करते हैं, राधा रानी श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, तो क्या होता है कृष्ण बिल्कुल जैसे नशे में एक व्यक्ति होता है ना, तो ऐसे राधा रानी का दर्शन करने लगते हैं और राधा रानी के पास जाने लगते हैं। तभी देखिए जो पहंडी उत्सव होता है, पांडु विजय उत्सव, तो जगन्नाथ जी को जब उठा उठा के लेके आते हैं, जगन्नाथ ऐसे हिलते हिलते रहते हैं ना, तो इसके वजह कई लोगों को भाव नहीं पता बेसिकली। तो ये वृंदावन के अंदर ये लीला हुई थी जिसमें कृष्ण इस प्रकार से हिलते डुलते राधा रानी के पास जाते हैं और फिर दोनों में लीला होती है। और आनंद विकार के अंदर क्या है, वो एक कछुए टाइप का रूप धारण कर लेते हैं, तो वो जगन्नाथ का रूप है। और क्योंकि बलभद्र सुभद्रा और फिर जब कृष्ण आते हैं द्वारिका से वृंदावन आने को, तो ये भी रथ यात्रा का जो है एक समागम है, इसीलिए बलदेव पहले फिर सुभद्रा और फिर जगन्नाथ जी ऐसे जाते हैं। तो अब जो है, और कृष्ण को ब्रज बहुत प्रिय है, तो इसीलिए कृष्ण साल में जगन्नाथ के रूप में एक बार यहाँ आते हैं। वृंदावन समय ए उपवन गण तहा देखी बारे उत्कंठित है मन। तो जब सारे बगीचों को देखते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि ये सब क्या करते हैं, कृष्ण को जगन्नाथ जी को वृंदावन की याद दिलाते हैं, इसीलिए जगन्नाथ ये देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। बाहर से तो दिखावा करते हैं कि वे रथ यात्रा को में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्यों, रथ यात्रा के पीछे एक भाव भी है। अब 15 दिन तक बीमार थे भगवान, है ना, अब बिल्कुल रेडी होकर के आए हैं। इस 15 दिन में भक्त लोग क्या करते हैं, उनके ड्यूटी का सब रेनोवेशन वगैरह कर देते हैं, कुछ भी पेंट वगैरह है कुछ भी, तो सब करते हैं। तो अब भगवान एकदम मतलब हृष्ट पृष्ट हो करके, स्वस्थ हो करके, और नया शरीर एक प्रकार से कह सकते हो, और नया कलेवर धारण करके, कोई आदमी बड़ा अच्छा श्रृंगार इत्यादि करता है तो क्या करता है, अबे लोगों को दिखाऊं बाहर जाके कि नहीं। तो रथ यात्रा का जो उड़िया लोगों का, कई लोगों का भाव ऐसा रहता है कि जगन्नाथ क्या है, रथ यात्रा में अभी 15 दर्शन नहीं दिया, तो ये भी एक भाव है वहां पे लोकल भक्तों का। तो बाहर से दिखाना चाहते हैं कि रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए वो जगन्नाथपुरी छोड़ते हैं। भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो क्या वहां बगीचों में आनंद लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी को साथ क्यों नहीं लेके आते। भाई जब व्यक्ति को आनंद लेना है तो अपनी पत्नी को लेके आ सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण इहार वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मी नहीं अधिकार। कह रहे कि इसका कारण सुनिए प्रभु, वृंदावन में लक्ष्मी को प्रवेश नहीं किया जा सकता। क्यों, वृंदावन में कृष्ण कौन है। अभी कोई आपसे पूछे आप किसकी पूजा करते हो, आप क्या बोलोगे, बोलो हमारा भगवान ग्वाला है, चोर है, है ना, गाय चराते हैं। अब आप बोल सकते कृष्ण भगवान है, षड ऐश्वर्यशाली है, वो अलग बात है, लेकिन जो जो गौड़ीय वैष्णव है वो तो यही समझते हैं कि हम तो गोपाल है ना, कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं उनकी हम जो है सेवा करते हैं, और उनके भक्तगण भी सब गोपियां हैं, ग्वालिन हैं। अब लक्ष्मी देवी क्या है, वहां प्रवेश नहीं किया जा सकता। क्यों, वृंदावन लीलाए कृष्ण सहाय गोपीगण गोपीवण मीना कृष्ण हरिते नारे मन। क्योंकि वृंदावन में जो कृष्ण के असिस्टेंट्स है, एकमात्र सहायिकाएं कौन है, गोपियां हैं, उनके अलावा कृष्ण के मन को कोई हर नहीं सकता। तो महाप्रभु कहते हैं कृष्ण रथ यात्रा के बहाने सुभद्रा और बलराम के साथ वहां जाते हैं। उन बगीचों में गोपियों के साथ की सारी लीलाएं भगवान कृष्ण के अत्यंत गुह्य भाव है, उन्हें कोई जानते कोई नहीं जानता। कि जो सुंदर लीलाएं कृष्ण गोपियों के साथ करते हैं वृंदावन के निकुंज में, उसको कोई ज्यादा जानता नहीं है। तो फिर कृष्ण की लीलाओं में तो कोई दोष नहीं है, तो लक्ष्मी जी क्यों रोष प्रकट कर रही हैं उन्हें, है ना। अतएव कृष्णेर प्राकट्य नहीं किछु दोष तबे के न लक्ष्मी देवी करे एत रोष। तो लक्ष्मी इतना क्यों क्रोधित हो रही है भाई। तो स्वरूप दामोदर उत्तर देने लगते हैं, स्वरूप कहे प्रेमवतीर एत स्वभाव कांते रांद औदास्य लेश हय क्रोध भाव। प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। कि जब अगर लवर नेग्लेक्ट करे अपनी प्रेमिका को तो उसे क्रोध आने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वधाम से बात करें तो क्या होता है, लक्ष्मी जी का जुलूस वहां पे आता है। और लक्ष्मी जी की को क्या है, 4 आदमी पालकी में लेके जा रहे थे और सोने की पालकी में सवार थी पालकी एकदम। अब लक्ष्मी जी की पालकी है तो आप सोचिए कैसी होगी, लकड़ी की तो नहीं होगी, स्टील की तो नहीं होगी, है ना, रत्नों से पूरा जटित एकदम बढ़िया तरीके से। पालकी के चारों ओर छत्र चामर झंडे झंडियां लिए हुए थे, उनके आगे गविये नर्तकियां थी, दासियां जल के घड़े, स्त्रियां ना ये क्या बोलते हैं उसे, कलश, लेकर के, ये बड़ा शुभ होता है, तो वो लेकर के चामर पान की पिटारियां लिए थी, सैकड़ों दासियां थी, सभी आकर्षक वस्त्र धारण किए थी और बहुमूल्य हार पहने थी, तो ये सब इतना बड़ा जुलूस निकल रहा था। वैसे अगर आप कभी जुलूस को देखेंगे ना तो डर लग जाएगा कभी कभी भक्तों को, क्योंकि वो साधारण गौड़ीय वैष्णवों की तरह हरे कृष्णा कीर्तन तो नहीं कर रहे होते हैं, और लक्ष्मी जी क्रोधित क्रोध में है तो उनके दास दासी भी सब बड़े क्रोध में होते हैं, तो बड़ा शोर मचाते हुए जब जाते हैं ना तो आपको लगेगा ऐसे पता नहीं वो शनिदेव के कोई भक्त शोर नहीं मचाते हैं, तो ऐसे लोग शोर मचाते ना लगेगा, डर लग जाता है कई बार जिस प्रकार के आवाजें करते हैं वो। तो अलौकिक ईश्वरीय संगे बहु परिवार क्रुद्ध हैया लक्ष्मी देवी हाइला सिंह द्वार। तो लक्ष्मी देवी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आ पहुंची, उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य थे और सभी असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब जुलूस आ गया तो लक्ष्मी जी की सारी दासियां क्या करने लगी, जितने भी जगन्नाथ के सेवक थे सबको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, बंदी बना लिया और हथकड़ियां बांध दी उनको और लक्ष्मी के चरण कमलों पर गिरा दिया उन्हें, और सभी धन लूटने वाले चोरों की तरह बंदी बना लिए गए, जैसे कोई चोर होता है ना उसको बंदी बना लेते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य दे रहे हैं, जब जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा आरंभ करते हैं लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हैं अगले दिन लौट आएंगे, किंतु जब वे नहीं लौटते तो लक्ष्मी जी दो तीन दिन तक उपेक्षा प्रतीक्षा करने के बाद अनुभव करने लगती है कि उनके पति ने उनकी उपेक्षा की है, अतएव वे स्वाभाविक रूप से काफी क्रुद्ध होती हैं। वे स्वयं तथा उनकी सखियां खूब सज धजकर मंदिर से बाहर आती हैं और मुख्य द्वार के सामने खड़ी हो जाती हैं। तब उनकी सखियां जगन्नाथ के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बना लेते हैं और उन्हें लाकर जबरन लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष नतमस्तक कराती हैं। इनफैक्ट फिर जगन्नाथ जी उनको बोलेंगे बाद में कि मैं आऊंगा एक दो दिन बाद और आऊंगा, फिर रिटर्न रथ में जब भगवान आते हैं एक दिन रथ के ऊपर खड़े रहते हैं और भगवान का सोना वेश होता है, सोनार वेश होता है उस दिन, और उसके बाद में रात के समय जब भगवान को वापस मंदिर में लेके जाने लगते हैं तो बलराम जी को ले जाते हैं, सुभद्रा को ले जाते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी को लेकर के जाते रथ से, जानते हैं क्या होता है, लक्ष्मी जी ऊपर से आती हैं अपने सेवकों के साथ और डांटती हैं, कृष्ण को बहुत गालियां निकालती है, बोले वहीं रहो जा करके, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और लिटरली स्पीकिंग मंदिर के मुख्य किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। जगन्नाथ बाहर खड़े हैं, ये लीला अगर आप कोई रिटर्न रथ में जाएंगे तो देखने का मौका मिलेगा, तो जगन्नाथ के मतलब मंदिर के मेन गेट बंद कर दिए जाते हैं कि जगन्नाथ कोई प्रवेश नहीं है, तो जगन्नाथ कान पकड़ते हैं, सॉरी मांगते हैं, आश्वासन देते हैं, तो फिर गेट खुलता है, लक्ष्मी चली जाती है गेट बंद करके, लेकिन बाद में उनकी सेविकाएं खोल देती हैं जो है। तो इस प्रकार से जब नौकर लक्ष्मी के चरण कमलों पर गिरे तो लगभग अचेत हो गए, उन्हें डांटा डपटा गया, भद्दी भद्दी गालियां दी, मजाक बनाया गया, और जब महाप्रभु के संगी ने लक्ष्मी जी की दासियों के धृष्टता देखी तो वे हंसने लगे और हाथों से अपने मुख को ढक लिया कि कैसे वो जगन्नाथ जी के सेवकों का मजाक उड़ा रही हैं। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं तीनों लोकों में इस तरह का अहंकार नहीं है, कम से कम मैंने न तो देखा है न सुना है। तो कह रहे हैं कि अब नॉर्मली अहंकार कैसा होता है, जब स्त्रियां मान धारण करती हैं तो क्या होता है, मानिने निरुत्साहे निरुत्साहे छाड़े विभूषण भूमे वसी नखे लेखे मलिन वदन। जब कोई स्त्री उपेक्षित निराश हो जाती है तो अहंकार वश मान वश अपने आभूषण उतार कर खिन्न होकर फर्श पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से फर्श पर रेखाएं खींचती हैं। तो बोले इस प्रकार का गर्व तो सुना है हमने, जैसे हम रामायण में देखते हैं कैकेयी चली जाती है कोप भवन के अंदर, है ना, तो ऐसे हम देखते हैं वृंदावन के अंदर श्रीमती राधा रानी का भी मान धारण कर लेती है, कृष्ण को प्रवेश नहीं होता, फिर मान मंदिर की लीला होती है, कृष्ण एक मोर बन के नृत्य करते हैं, तो ऐसे। लेकिन बोला कि ऐसा तो हमने देखा है कि स्त्रियां फिर वो जो गोपियां हैं भगवान की सब वो क्या करेंगी, मान धारण करने के लिए कृष्ण मिलेंगे नहीं, आभूषण उतार देंगी, कहीं कोप भवन में जाके बैठ जाएंगी, नाखून से रेखाएं खींचने लगेंगी, लेकिन लक्ष्मी का बड़ा मान अजीबोगरीब है। तो बोले ऐसा हमने देखा नहीं, पूरे सुना नहीं कहीं पर, वृंदावन में गोपियों का ऐसा मान है, लेकिन लक्ष्मी का मान बड़ा है कि कैसा है, वे अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करती हैं और यहां तक कि अपने पति पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती हैं, मतलब जगन्नाथ के बतावा बोलने के लिए, ये कैसा मान है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, लक्ष्मी जी की धृष्टता को देखकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु से गोपियों के प्रेम व्यवहार की उत्कृष्टता बतानी चाहिए। उन्होंने कहा हे प्रभु, मुझे कभी भी लक्ष्मी के आचरण जैसी किसी वस्तु का अनुभव ही नहीं है। क्यों, स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है, वो तो ललिता सखी के अवतार है, वो तो ब्रजवासी है, उन्हें थोड़ी द्वारका और लक्ष्मी की महिषी का ऐश्वर्य बिल्कुल भी प्रभावित करने वाला है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हम कभी कभी यह तो देखते हैं कि प्रियतमा पत्नी को अपने पद का गर्व होता है, उपेक्षा के कारण वह असंतुष्ट होती है, तब उसे अपनी सूरत की परवाह नहीं रह जाती, गंदे वस्त्र पहनती है, खिन्न भाव से फर्श पर बैठकर अपने नाखूनों से रेखाएं खींचती रहती है, हमने इस तरह का मान सत्यभाम और वृंदावन की गोपियों में सुना है, किंतु जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी के साथ हम कुछ दूसरी बात पाते हैं। वे अपने पति पर अत्यधिक क्रोध होती है और अपने महान ऐश्वर्य से उन पर आक्रमण करती है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ठीक है, आप वृंदावन में होने वाले प्रकट होने वाले समस्त प्रकार के मानों का वर्णन करो। अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी उत्तर देने लगते हैं, कहते हैं, गोपियों का मान सैकड़ों धाराओं के साथ बहने वाली नदी के समान है। अभी समझ में आए ना आए आप सुन लीजिएगा, और इसके बाद एक चीज जान लीजिएगा कि आध्यात्मिक जो विषय है ये पूर्ण विज्ञान है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम रस है यह भी पूर्ण विज्ञान है। तो बोल रहे हैं, विभिन्न स्त्रियों में यानी नायिकाओं में इस जगत के अंदर लोग सोचते हैं मैं नायक हूं, कोई माता ही सोचती है मैं नायिका हूं, राइट। ज्यादा होता है तो लोग चलो हीरो पे नायक नायिका को देखते हैं, हीरो हीरोइन को देखते हैं, लेकिन हम भक्तों के लिए नायक और नायिका कौन है? राधा रानी और कृष्ण। नायकानाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सभी हीरो में असली हीरो कौन है? शिरोरत्नम, वो है भगवान श्री कृष्ण। एक्चुअली स्पीकिंग बाकी लोग तो विलेन भी नहीं है, है ना। हम लोग अपने को हीरा सोच सकता है लेकिन वास्तविकता में विलेन भी नहीं है। और है ना, ऐसा एक भजन में आता है कि तार मध्य हे मा पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका, कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम। वहां पे क्या है, तार मध्य हेमपीठ बोसी, तार मध्य हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका, कि वहां पे कौन है? तार मध्य हेमपीठ, वहां पे एक हेमपीठ है, योगपीठ है, और अष्ट दल है उस लोटस के अंदर, और वहां पे कौन बैठे हैं? अष्टदले प्रधान नायिका, वहां पे कौन बैठे हैं? श्री वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी। तार मध्य रत्नासने बोशिया छेंदुए जने श्याम संगे सुंदरी राधिका, कि वहां पे क्या रत्न सिंहासन के ऊपर कौन बैठे हैं? नायक और नायिका श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण बैठे हैं। तो वहां पे जो ब्रज के जो स्त्रियों नायिकाओं का गोपियों का श्रीमती राधा रानी का जो क्रोध है या मान है वो बता रहे हैं कि विभिन्न स्त्रियों में प्रेम के गुण स्वभाव भिन्न होते हैं, उनके ईर्ष्या रुक्त क्रोध के भी अनेक भेद और गुण होते हैं। द्वेष पूर्ण क्रोध से युक्त नायिकाओं के तीन भेद हैं, तीन प्रकार के हीरोइंस हैं वहां पे, कुछ धीर स्वभाव की, कुछ अधीर स्वभाव की, कुछ धीर अधीर स्वभाव की। जब अधीर स्वभाव धीर नायिकाओं का स्वभाव क्या है, जब दूर से अपने नायक को आते देख लेती हैं तो स्वागत के लिए उठ खड़ी होती हैं, निकट आ जाती हैं, बैठने के लिए आसन देती हैं, अपने क्रोध को हृदय में छिपा लेती हैं, बाहर से मीठी बोली बोलती हैं, जब प्रेमी आलिंगन करता है तो वो भी आलिंगन करती हैं। इनका व्यवहार और अत्यंत सरल होता है लेकिन अपने मान को हृदय के भीतर रखती हैं, किंतु मृदु वचनों और मुस्कानों से अपने प्रेमी के आचरण का प्रतिवाद करती हैं। तो बड़े जेंटल वे से वो जो है विरोध करती है, नॉर्मली बहुत वेलकम करती हैं। जो अधीर नायिकाएं हैं कभी कभी प्रेमी की भर्त्सना कटु शब्दों से करती हैं, कभी कभी उनको कुछ प्रताड़ित करती हैं, फूल की माला से बांध लेती हैं। और जो धीरा धीर स्वभाव की नायिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वो द्विअर्थी शब्दों से मजाक उड़ाती है उनका, कभी प्रशंसा करती हैं, कभी निंदा करती हैं, कभी निरपेक्ष इनडिफरेंट हो जाती हैं। फिर बता रहे हैं कि हीरोइंस को और एक प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है, गोपियों को नायिकाओं का वर्गीकरण मुग्धा मध्या और प्रगल्भा के रूप में भी किया जा सकता है। देखिए ये है गौड़ीय वैष्णविज्म, ऐसे तो पता नहीं इस प्रकार से हमें चर्चा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी के पास आते थे, देखो कृष्ण कितने लस्टी हैं, 16108 आने से शादी की उन्होंने। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण इज गॉड, इफ ही हैज टू बी लस्टी इज सुप्रीमली लस्टी, वाई ओनली 16108, ये कहना 16 मिलियन वाइफ, 16 करोड़ वाइफ। तो लोग कहते हैं, और एक और महान व्यक्ति ने बोला कि यदि कृष्ण जैसे व्यक्ति ने कृष्ण ने रास्ते जैसा कृत्य किया है तो मुझे अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णवों को के साहित्य के अंदर क्या चर्चा किया गया है, भगवान का यौन जीवन यानी भगवान की सेक्स लाइफ, है ना। क्यों? क्योंकि यह इस भौतिक जगत के सेक्स लाइफ के समान नहीं है, है ना। ऐसा नहीं होता कि भगवान के रास नृत्य के बाद में सब गोपियां जाती और एबॉर्शन होता है वहां पर, इस प्रकार से नहीं होता। यह कोई साधारण युवक युवतियों का भौतिक संबंध नहीं है, यह दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा का जो भक्त और एक भगवान के स्वामी के बीच में जो आदान प्रदान है वह है। तो इसको समझ पाना हम बद्ध जीवों के लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि श्री चैतन्य चरण इसका वर्णन है तो हमसे पढ़ रहे हैं। तो मुग्धा नायिका द्वेषपूर्ण क्रोध के छलपूर्ण व्यवहार की बारीकियों के विषय में अधिक नहीं जानती रहती, वह केवल अपना मुंह ढककर रोती रहती है। जब प्रेमी मधुर शब्द बोलता है तो वह प्रसन्न हो उठती है। जो मध्या और प्रगल्भा नायिकों को फिर आप बांट लीजिए, धीर अधीर और धीर अधीर में विभाजन किए जा सकते हैं। कुछ अत्यधिक बातूनी, कुछ मृदु और कुछ संतुलित होती हैं। हर नायिका अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण के प्रेम भाव को बढ़ाती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वह कृष्ण के प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं। यद्य भी कुछ गोपियां बातूनी, कुछ मृदु, कुछ संतुलित हैं, लेकिन सभी दिव्य हैं और निर्दोष हैं। वे अपने विशिष्ट गुणों द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। तो महाप्रभु को बड़ा आनंद आया, तो वो कह रहे हैं, कहा कहा दामोदर भले बार बार, आगे कहिए आगे कहिए। दामोदर कहे कृष्ण रसिक शेखर रसवादिक रसमय कले बर। तो उन्होंने कहा कृष्ण रसिक शेखर हैं, वह सभी दिव्य रसों का आस्वादन करने वाले, उनका शरीर दिव्य आनंद से बना हुआ है। कृष्ण प्रेममय, सदैव अपने भक्त के प्रेम में अधीन रहते हैं। गोपियां शुद्ध प्रेम में तथा दिव्य रसों के आचार विचार में अत्यंत अनुभवी हैं। गोपीकार प्रेम नहीं रसाभाष दोष, अतैव कृष्ण र करे प्रेम परम संतोष। उनके प्रेम में कोई दोष या मिलावट नहीं, अतैव कृष्ण को परम संतोष प्रदान करती हैं। और अब गोपियों में भी दो भाग हैं, कौन कौन से, एक वाम भागी और दूसरी दक्षिणा भागी है, वामपंथी और दक्षिणपंथी, यानी लेफ्ट विंग गोपीज राइट विंग गोपीज। राधा रानी कौन से विंग में आती हैं? लेफ्ट विंग गोपीज के अंदर वाम, और राइट विंग गोपीज की लीडर कौन है? चंद्रावली। तो समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी प्रमुख हैं, वे प्रेम रूपी रत्ना की खान है और समस्त शुद्ध दिव्य माधुर रस के स्रोत हैं। गोपीगण मध्य से राधा ठकुरानी निर्मल उज्ज्वल रस प्रेम रत्न खानी। राधा रानी वयस्क हैं, उनका चरित्र समदर्शी है, वे सदैव प्रगाढ़ प्रेम में निमग्न रहती है और निरंतर वाम पक्षी गोपियों के भाव का अनुभव करती रहती है। वाम पक्षी जो गोपियां हैं ये बड़े मान धारण करने वाली हैं और क्रोध को सहन नहीं कर सकती और कृष्ण पे क्रोध प्रदर्शित करती हैं, है ना। तो इस प्रकार से, तो वाम गोपी होने के कारण उनका स्त्रीयोचित क्रोध सदैव जागृत होता रहता है, किंतु कृष्ण को उनके दिव्य कार्यकलापों से आनंद मिलता है। तरुण और तरुणी के बीच प्रेम की प्रगति स्वभाव से सांप की गति के समान कुटिल होती है, इसीलिए दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, सकारण क्रोध अकारण क्रोध। तो महाप्रभु आनंद बड़ा आगे बढ़ गया, कह रहे कहो कहो कहे प्रभु भले दामोदर। श्रीमती राधा रानी का प्रेम अत्यधिक उन्नत भाव है, उनके सारे व्यापार नितांत शुद्ध तथा भौतिक कलम से रहित हैं। वस्तुतः उनके व्यापार सोने से भी 10 गुना अधिक शुद्ध है। जैसे ही राधा रानी को कृष्ण का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, सहसा उनका शरीर विविध भाव रूपी आभूषणों से अलंकृत हो जाता है। मतलब जब राधा रानी को कृष्ण का दर्शन प्राप्त होने लगता है तो स्वाभाविक उनके शरीर में क्या होने लगता है, अनेक प्रकार के भाव प्रकट होने लगते हैं। अष्ट सात्विक हर्षादि व्यभिचारी यार सहज प्रेम विंशति भाव अलंकार। तो 8 सात्विक प्रकार जो हैं प्रकट होते हैं, या 33 व्यभिचारी भाव और 20 भाव अलंकार सम्मिलित हैं। प्रभुपाद जी ने 33 व्यभिचारी भावों की पूरी रचना चर्चा की है यहाँ पर, मतलब लिखा है उनके बारे में, और बोला है कुछ जो है संकुच मतलब व्यभिचार जो भी है, चलो ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या है। जिन कतिपय लक्षणों की विवेचना निम्नलिखित श्लोकों में की गई है वे हैं, तो 8 प्रकार के जो है लक्षणों की चर्चा की गई है। तो जब श्रीमती राधा रानी अनेक भाव विभूषणों को प्रकट करती है तो कृष्ण के सुख समुद्र में अत्यंत लीव लहरें उठने लगती हैं। तो पहला भाव है किल किंचित भाव, उसमें श्रीमती राधा रानी इन भाव रूपी आभूषण कृष्ण को मन को हर लेती है। जब कृष्ण राधा रानी को देखते हैं तो उनका मन राधा रानी के शरीर का स्पर्श करने को होता है, तो क्या करते हैं, उन्हें रोक देते हैं उस स्थान पे जहां पे वे जमुना को पार करने वाली थी। ये है बेसिकली दान के लिए जो लीला है, यह उसका वर्णन है। तो राधा रानी जब नदी पार करने लगती है तो क्या बोलते हैं, ये पार करने लो टैक्स देना पड़ेगा। फूल तोड़ने लगती हैं तो बोले मैं बगीचे का माली हूं तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण उनके भाव को रोकते हैं। तो जो है ये सब, और इसके अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, गर्व अभिलाषा रुदन हंसी ईर्ष्या भय और क्रोध, ये सब राधा रानी के अंदर प्रकट होते हैं। ये 7 भाव हैं, और जब हर्ष के स्तर पर मिलते हैं तो इनका जो मिश्रण है वो महाभाव कहलाता है, है ना। और इसको इसके लिए 7 अवयव हैं। तो दिव्य हर्ष के स्तर पर प्रेम भाव के 8 लक्षण हैं, और जब वे मिलते हैं तो उनका आस्वादन करके भगवान कृष्ण का मन पूर्णतः तृप्त हो जाता है। तो बताया है कि ये कृष्ण भाव कैसा है, दधी खंड घृत मृग मरीच कर्पूर एराची मिले न यही छे रसाला मधुर, कि जैसे दही खांड घी शहद काली मिर्च कपूर और इलायची का मिक्स किया जाए तो बड़ा स्वादिष्ट और वैसे मधुर हो जाता है, उसी प्रकार से राधा रानी के महाभाव क्या हैं, अत्यंत मधुर हो जाते हैं। इसके अंदर गोविंद लीलामृत के बड़े सुंदर सुंदर श्लोक भी वर्णन किए गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोला कि कृपया करके श्रीमती राधा रानी के शरीर को अलंकृत करने वाले आभूषणों को और बतलाइए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वर्णन करना शुरू किया, कभी कभी जब श्रीमती राधा रानी बैठी होती हैं तो वृंदावन जा रही होती है, कृष्ण का दर्शन पा जाती हैं, उस समय जो विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें विलास कहलाता है। क्या प्रकट होते हैं, विलास क्या है? नायिका के मुख, नेत्रों, शरीर के अन्य भागों में प्रकट होने वाले विविध लक्षण तथा उसके चलने, खड़े होने या अपने प्रेमी से मिलने पर बैठने की मुद्रा को विलास कहते हैं। लज्जा, हर्ष, अभिलाषा, आदर, भय तथा वामा गोपियों के लक्षण, ये सब मिलकर श्रीमती राधा रानी को चंचल बनाते हैं। जब राधा रानी कृष्ण के समक्ष खड़ी होती हैं तो तीन स्थान टेढ़ी हो जाती हैं, गर्दन, कमर और पांव से, और उनकी भौहें नृत्य करने लगती है। जब राधा रानी के मुख पर तथा नेत्रों पर विविध भावों का उदय होता है तो सुंदर नारी सुलभ प्रवृत्ति के उपयुक्त होते हैं, तब ललित अलंकार का प्राकट्य हुआ माना जाता है। और तो है, तो दोनों के अंदर जब राधा रानी कैसे ललित अलंकारों को देखते हैं तो कृष्ण से मिलने की उत्कंठा बढ़ जाती है। तब कृष्ण आगे बढ़कर लालच वश श्रीमती राधा रानी के वस्त्र का किनारा खींचते हैं, तब वे भीतर से अधिक प्रसन्न होती है किंतु बाहर से रोकने का प्रयास करती हैं। यह आनंदमय भाव कुट्टुमित कहलाता है। जब यह भाव प्रकट होता है तो बाह्य रूप से कृष्ण दूर रहना चाहती हैं, ऊपर से क्रोध होती है, अंदर से बहुत सुखी होती हैं। तो जो है श्रीमती राधा रानी कृष्ण से अपने हाथ से कृष्ण को रोक रही थी, अंदर सोच रही थी कृष्ण अपनी सारी इच्छाएं पूरी करें, तो बाहर से विरोध अक्रोध प्रकट कर रही थी और बाहर से बनावटी रोटन जैसा प्रदर्शित कर रही थी, मानो उन्हें व्यथा पहुंचती हो। फिर वे मंद हंसती हैं और कृष्ण को ताड़ना देती हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी उन विभिन्न प्रेम भावों से अलंकृत हैं, विभूषित हैं, जो श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करते हैं। अनंत कृष्ण लीला ना जाय वर्णन, आपने वर्णन यदि सहस्त्र वदन। श्री कृष्ण के अनंत लीलाओं का वर्णन कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है, भले ही वे स्वयं सहस्त्र वदन अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग के अवतार के रूप में उनका वर्णन क्यों ना करें। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे यहां रुकते हैं श्रीवास ठाकुर हंसने लगते हैं और कहते हैं, श्रीवास हासिया कहे सुन दामोदर, अपार अमार लक्ष्मी हृदय संपत्ति वितर। अरे श्रीवास, देखो मेरी लक्ष्मी कितनी ऐश्वर्यवान है। जहां तक वृंदावन के ऐश्वर्य की बात है, कुछ फूल है, टहनिया है, पहाड़ के मिनरल्स है, मोर पंख है, गुंज नामक पौधा, वहां क्या जंगल है, गांव है। वृंदावन देखने का निश्चय करने में जगन्नाथ जी वहां गए तो इसे सुनकर लक्ष्मी को ईर्ष्या और बेचैनी का अनुभव होने लगा। तो लक्ष्मी को आश्चर्य हो रहा है, अरे जगन्नाथ का इतना ऐश्वर्य है, वृंदावन में क्यों जा रहे हैं। तो जो है उनकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से लक्ष्मी ने अपने आप को सजाने का काफी प्रबंध किया। तो श्रीवास कह रहे हैं कि लक्ष्मी ने किस लिए जो है सब किया, यह हंसाने, उनका मजाक उड़ाने के लिए, कहां गांव में जाके आप देहाती की तरह रह रहे हो, है ना। तो तोमार ठाकुर देख एत संपत्ति छाड़ी, पत्र पुष्प पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। कि तो लक्ष्मी की सेविकाओं ने जगन्नाथ के सेवकों से बोला, तुम्हारे स्वामी जगन्नाथ ने लक्ष्मी के महान ऐश्वर्य का त्याग क्यों किया और कुछ पत्तियां फूलों फलों के लिए, राधा रानी के फूलों का बगीचा देखने के लिए आ गए। तो तुम्हारे स्वामी हर बात में अत्यंत पटु है, लेकिन फिर भी ऐसे कार्य क्यों करते हैं, तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के पास लेके आओ। तो इस तरह लक्ष्मी जी की सारी दासियां जगन्नाथ जी के सभी दासों को बंदी बनाकर लक्ष्मी जी के समक्ष ले आई, उनको दंड दिया, प्रणाम करने के लिए बाध्य किया। फिर सारी दासियां रथ पर, जब जगन्नाथ का रथ है उस पर क्या करती हैं जानते हैं, लाठियों से पिटाई करती हैं रथ की, यही वो गाड़ी है जिसमें जगन्नाथ जी आए थे ना। और अंत में फिर जगन्नाथ के सब सेवकों ने बोला, इतनी पिटाई हो रही है, रथ भी तोड़ देंगे, ये लोग हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि अगले दिन हम जगन्नाथ जी को आपके पास लेकर के आ जाएंगे। लक्ष्मी शांत होती है और हमारी, तो श्रीवास कहते हैं हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य क्या है, वर्णन अतीत है, वर्णन के वो है। तो श्रीवास ठाकुर ने सर्व दामोदर से कहा, आपकी गोपियां तो क्या करती हैं, सिर्फ दूध को मक्खन बनाने में और दही मतने में लगी रहती है, लेकिन हमारी ठकुरानी लक्ष्मी जी क्या है, रत्नों के सिंहासन पर बैठती हैं। तो सब लोग जब इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर कह रहे थे तो सब भक्त लोग हंसने लगे, महाप्रभु हंसने लगे। प्रभु कहे श्रीवास तो माते नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भाव तो माते ईश्वर प्रभाव। कि हे श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव नारद मुनि जैसा है, भगवान के ऐश्वर्य का तुम पर सीधा असर हो रहा है। मतलब गौड़ीय वैष्णव के भगवान का ऐश्वर्य का असर नहीं होता, लेकिन तुम्हारे ऊपर हो रहा है। लेकिन यहां दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य न जाने यह शुद्ध प्रेम भासी। तो स्वरूप दामोदर क्या वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं, वे इतना भी नहीं जानते कि ऐश्वर्य क्या होता है, क्योंकि वे शुद्ध भक्ति में ही डूबे रहते हैं। तो स्वरूप ने, दामोदर ने पलट के बोला, ये देखिए वैष्णवों के बीच में जब क्या बोलेंगे, किसी प्रकार का डिबेट या तर्क वितर्क है। स्वरूप कहे श्रीवास सुन सावधाने, वृंदावने संपद तोमार नहीं पड़े मने। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो श्रीवास, वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य को तुम भूल गए हो। वृंदावन का प्राकृतिक ऐश्वर्य एक समुद्र के समान है, द्वारका और वैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर भी नहीं है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका पूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन ही प्रकट होता है। चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गण दासी चरण भूषण, कल्प वृक्ष लतार जहां सहजी कवन, पुष्प फल बिना केह न मागे अन्य धन। वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है, इसकी पूरी भूमि बहुमूल्य रत्नों की खान है और चिंतामणि का प्रयोग वृंदावन की दासियों के चरण कमलों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। वृंदावन कल्प वृक्ष और लताओं का प्राकृतिक वन है और वृंदावन के निवासियों के कल्प वृक्षों के फल और फूल के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वृंदावन में कामधेनु गायें हैं जिनकी संख्या अनंत है, वे एक जंगल से दूसरे जंगल में चरती हैं और केवल दूध देती हैं, लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। वृंदावन के लोगों की सहज वाणी संगीत जैसी लगती है, उनके सहज चाल नित्य जैसी प्रतीत होती है। वृंदावन का जल अमृत के समान होता है, वहां ब्रह्म ज्योति का तेज दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, साक्षात दृष्टि गोचर होता है। वहां गोपियां भी लक्ष्मी और वैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मी को मात करती हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण अपनी प्रिय संगिनी दिव्य वंशी को सदैव बजाते रहते हैं। कौन सा श्लोक हुआ होगा? ब्रह्म संहिता का श्लोक है, श्रिय कांतः कांतः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमाभो मे चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि तदा स्वाद्यम अपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहानिमेषर्दाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्य संतोषिति विरलचारा कतिपये। तो ये श्लोकों कोट करके सर्व दामोदर गोस्वामी जब व्याख्यान करते हैं तो श्रीवास ठाकुर क्या बोलते हैं? हार गया नहीं, शुनि प्रेमावेश नित्य करे श्रीनिवास, कक्ष ताली बाजाए करे अट्ट अट्ट हास। तो बड़े प्रेम से नाचने लगते हैं, जोर जोर से ताली बजाते हैं, हंसने लगते हैं और नित्य करने लगते हैं। राधार शुद्ध रस प्रभु आवेश सुनीला, सही रसावेश प्रभु नित्य आरंभिला। तो श्रीमद चैतन्य महापुर राधारानी के दिव्य रस की व्याख्याओं को सुनते हैं तो दिव्य प्रेम में मग्न होकर नाचने लगते हैं, खूब नित्य करते हैं। फेस्टिवल तो एंड हो जाता है लेकिन कीर्तन नित्य चलता रहता है, सब भक्त थक जाते हैं। अब बोले महाप्रभु कैसे रोका जाए? तो रोकता कौन था महाप्रभु को? नित्यानंद प्रभु रोका करते थे या स्वरूप दामोदर गोस्वामी? अब क्योंकि श्री चैतन्य महापुर राधारानी के भाव में थे, नित्यानंद से संकुचित करके वहां गए नहीं, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जाते हैं और सब भक्तों के भाव पे कहते हैं महापुर सब भक्त थोड़ा थक गए हैं, अब किसकी बारी है? महाप्रसाद है गोविंद है ना। तो इस प्रकार से इस हीरा पंचमी महोत्सव को सब भक्त मनाते हैं, फिर वहां पे बड़ा सुंदर प्रसाद होता है, सब भक्तों से रेस्ट करते हैं और इस प्रकार से वृंदावन की लीलाओं का चर्चा करते हैं। श्री हीरा पंचमी महामहोत्सव की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। एक चीज मैं भूल गया था, इस प्रकार की लीला का वर्णन करते समय एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। विक्रीडितम ब्रज भरो इदम च विष्णु श्रद्धान्वित अनुशृणु याद अथ वर्ण येद्यः भक्तिम पराम भगवते प्रतिलभ्य कामम हृदरोग आत्मशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। जो कोई वृंदावन के युवा गोपिकाओं के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा, इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। तो हमने चर्चा किया तो इसीलिए कि हमारे हृदय से ये काम वासना समाप्त हो सके, जो अननेसेसरी यौन इच्छा है, स्त्री पुरुष के बीच की इच्छा है, उस सब को हम भूल करके वास्तविक नायक और नायिका श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण कमलों पे हम वृंदावन के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का पालन करते हुए हम उसका अनुभव कर सकें। जय श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे।